Thank you. शब्दों का अनुवाद इस प्रकार है, आह कहा राजा, राजा युधिष्ठिर ने धर्मसुतः, धर्मराज के पुत्र, चिंतयन सोचते हुए, हृदय सुहृदाम मित्रों के, बद्धम बद्ध को प्राकृतेन भौतिक विचार से, आत्मना अपने द्वारा, विप्राह हे ब्राह्मणों, स्नेह प्यार, मोह वशम के वशीभूत, गतः गया हुआ। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा सुमूर्ति अभय चरणारविंद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकवादी मनुष्य के भांति शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। तात्पर्य, यद्यपि आशा की जाती थी कि युधिष्ठिर सामान्य मनुष्यों की भांति शोक संतप्त नहीं होंगे, लेकिन भगवान की इच्छा ही कहें, वे सांसारिक स्नेह के कारण मोहग्रस्त हो गए। जिस प्रकार अर्जुन मोहग्रस्त हुआ था, देखने वाला मनुष्य भली भांति जानता है कि जीव ना तो शरीर है न मन, अपितु भौतिक कल्पना से परे हैं। सामान्य मनुष्य हिंसा तथा अहिंसा के शरीर से जोड़, अहिंसा को शरीर से जोड़ता है, लेकिन यह एक प्रकार का मोह है। प्रत्येक व्यक्ति अपने वृत्ति के अनुसार कर्तव्य से बंधा हुआ है। क्षत्रिय को सही निमित्त के लिए विरोधी पक्ष के परवाह न करते हुए युद्ध करना होता है। इस प्रकार कर्तव्य पालन करते हुए शरीर के विनाश से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह शरीर जीव का बाहरी पहनाव है। यह सब महाराज युधिष्ठिर की ज्ञात था, लेकिन भगवान की इच्छा से वे सामान्य पुरुष जैसे बन गए, क्योंकि इस मोह के पीछे एक दूसरी बहुत बड़ी भावना थी कि राजा को भीष्म उसी प्रकार उपदेश दें जिस प्रकार स्वयं भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददान्ति सुपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथानिदं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगण ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सो कुंती महारानी ने प्रार्थना कर ली भगवान को कि आप क्यों वापस जा रहे हैं घर। उसके बाद अध्याय में एक अध्याय प्राप्त होता है कि किस प्रकार से धर्मराज युधिष्ठिर या यमराज के पुत्र युधिष्ठिर महाभारत युद्ध के उपरांत उनके युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए सेनाओं को देख के अत्यंत दुखी हो गए थे। ये कथा यहाँ पर प्राप्त होता है। ये प्रसंग चालू क्यों हुआ रघुनाथ को, ये चालू ही क्यों हुआ? ये कुंती महारानी तो हस्तिनापुर में मगर भीष्म पितामह यार वो तो चले गए थे तभी उत्तरायण में ना। मैं सोचा वो चले गए थे चले गए तो भगवान हस्तिनापुर के लिए सॉरी द्वारका के लिए निकल रहे थे तभी विष्णु पितामह थे। तो कुंती महारानी की निवेदन से भगवान फिर से मंद मंद मुस्कुराते हुए फिर रुक गए हस्तिनापुर में। फिर वहाँ पे हस्तिनापुर की स्थिति ऐसा था कि वहाँ पे युद्ध स्थल में किनारे भीष्म पितामह जो है ना सरसैया में थे, अर्जुन के बाणों से सरों के ऊपर बाणों के ऊपर और सैया बाणों को सैया के रूप में स्वीकार करते हुए उसके ऊपर सोए हुए थे। पूरा बाण उनके शरीर में पूरा छेद किए हुए थे मगर वो अपना शरीर छोड़े नहीं थे। भीष्म पिता ऐसा है कि वो उत्तरायण का इंतजार कर रहे थे, जिसे प्रभु जी ने बताया उत्तरायण का अर्थ कल बता रहे थे कि वो भगवान जी का एक नाम भी है ना उत्तरायण, तो इंतज़ार कर रहे थे उस समय का। और एक्चुअली भगवान जी का ये था संयोग कि युधिष्ठिर महाराज जी को वो शिक्षा दे सके, इसीलिए। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज आज का श्लोक का एक्चुअली मूल जो थीम जो है वो क्या है मालूम है कि युधिष्ठिर महाराज बहुत दुखी हैं। किसके लिए दुखी है कि वो उनके पक्ष के जो लोग हैं बहुत सारे वो मर गए हैं महाभारत युद्ध में, तो उस चीज़ को लेके बेचारे बहुत दुखी हैं। और बहुत दुखी होके आगे अभी बोलेंगे मोहग्रस्त होकर वो बोलेंगे युधिष्ठिर महाराज क्या बोलेंगे आगे आएगा, मगर आज के श्लोक में बस इतना ही है कि वो बहुत रो रहे हैं। सामान्य मनुष्यों की जैसा भौतिकवादी मनुष्यों की जैसा रो रहे हैं और रोते हुए ऐसा बोले उन्होंने। यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को धर्म पुत्र धर्मसुत कहा गया है, धर्मराज के पुत्र यमराज के पुत्र हैं वो, इसलिए धर्मसुत कहा गया। धर्मसुत कहने के पीछे तात्पर्य क्या हो सकता है यहाँ पे मालूम है, क्योंकि धर्मसूत होने के कारण क्योंकि वो धर्मराज होने के कारण सारे जो ज्ञान है आध्यात्मिक ज्ञान उनके पास है। और ये सब होने पर भी जस्ट नेक्स्ट शब्द में फिर से कहा गया है कि वो शोकग्रस्त है मोहग्रस्त है। तो जिस व्यक्ति के पास जो धर्मराज जैसा व्यक्ति जिनके पास सभी प्रकार के ज्ञान पूर्ण मात्रा में है ऐसा व्यक्ति होकर भी क्यों वो मोहग्रस्त हुए, ये एक विचार करने वाली बात है ना। इसलिए देखो उनको यमराज के पुत्र या धर्मराज के सुत के रूप में उनको कहते, राजा नहीं बोले युधिष्ठिर नहीं बोले, उनको बोले कि धर्मसुत धर्मराज के सूत्र है पुत्र हैं। इसके पीछे उद्देश्य यही है कि ये बताना चाह रहे थे कि सुत गोस्वामी कि देखो देखो असलियत में वो धर्मराजा के बेटे हैं, अर्थात सारा ज्ञान उनके पास है धर्मराज है भाई, फिर भी वो मोहग्रस्त हो गए। और रो रहे हैं, है ना, ये एक विचार करने बात है। इसलिए फिर श्रील प्रभुपाद जी ने इस श्लोक में जो मोह शब्द को लेकर ही तो जो 4-5 लाइन का तात्पर्य को लिखते हैं, तो हम उसी चीज़ का थोड़ा सा विचार विमर्श जो है कर सकते हैं उस चीज़ के ऊपर। युधिष्ठिर महाराज का यहाँ पे रोना उनके लोगों के लिए ये मोह का प्रतीक है ना, मोहग्रस्त होके वो रो रहे हैं अपने लोगों के लिए। तो असलियत में ये मोह शब्द का अर्थ क्या है, इल्यूजन इस किसको कहा जाएगा, मोह किसको कहा जाएगा, तो जो नहीं है उसको है करके सोचना ये मोह है, कुछ चीज है नहीं वो है करके सोचना ही मोह है। तो कैसे समझा जाए उदाहरण के द्वारा इस शब्द को, तो मोह शब्द का अर्थ को समझने के लिए बेस्ट उदाहरण है कि हमारा जो वो मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार, मिथ्या अहंकार क्या है, मैं और मेरा, अहम ममेति का जो भावना है, अहम ममेति का जो भावना है भागवतम में बताया, तो वो मोह है, उसी को मोह कहा जाता है। क्योंकि ये शरीर हम नहीं है, मगर हम अभी पूरा एकदम से कन्विंस क्या है कि मैं ये शरीर ही हूँ, इसलिए हमारा प्रतिदिन का कार्यकलाप, प्रतिदिन के बातचीत, प्रतिदिन की भावनाएं, ये सभी कुछ किसके हिसाब से हमारा हो रहा है, शरीर के हिसाब से ही हो रहा है, है ना। तो यही मोह है असलियत में, मोह मतलब और कुछ नहीं, है ना। मैंने कई सारे जगहों पर देखा मोह के बारे में पढ़ा, तो मोह के लिए श्रील प्रभुपाद एक ही चीज को बतलाते हैं कि मोह मतलब यूजर मतलब क्या है, जो नहीं है उसको है करके समझना। तो इस संसार में ये सबसे बड़ा मोह यही है कि हम अपने आप को शरीर करके सोचते हैं, हम अगर शरीर है नहीं, हम तो दिव्य आत्मा है, ट्रांसेंडेंटल दिव्य है, परमात्मा के अंश है, परम ब्रह्म के अंश है, ब्रह्म है हम, मगर हम अपने आप को ये शरीर करके सोच रहे हैं, शरीर करके सोच के कार्य कर रहे हैं, शरीर करके सोच कर बातें कर रहे हैं, शरीर करके सोच कर हर एक प्रकार के एक्टिविटीज कर रहे हैं हम संसार में, यही सबसे बड़ा मोह है इस संसार में। तो युधिष्ठिर महाराज भी इस मोह में है। तो ये एक विचार करने वाली बात यह है कि युधिष्ठिर महाराज जैसा भगवान के भक्त तो है ही, साथ साथ में सारे शास्त्रों में निपुण और स्वयं धर्म है, धर्मराज है, होकर भी इस प्रकार से मोह को ग्रस्त कैसे हो गए। तो एक जगह श्रील प्रभुपाद जी ने दो प्रकार की मोह के बारे में बोलते हैं, कैसे कैसे ये मोह होता है, चौथे स्कंद में वे कहते हैं, इन द बॉडीली कॉन्सेप्ट व्हेन वी थिंक दैट द सेंस ग्रेटिफिकेशन विल हेल्प अस, वी आर इन इल्यूजन। एक प्रकार का मोह ऐसा होता है कभी कभी कि हम ये जो शारीरिक भावना, दैहिक भावना जिसको कहा जाता है देहात्म बुद्धि, है ना, हम उस दिन काउंसलिंग में बता रहा था देहात्म बुद्धि के बारे में। तो ये जो देहात्म बुद्धि के वजह से हम सोचते हैं कि ये जो इंद्रिय भोग है हमको मदद कर सकता है ना, इंद्रिय भोग जो है ना हमको मदद कर सकता है या आनंद प्रदान कर सकता है, ये एक प्रकार का मोह है। एक दूसरे प्रकार का मोह कैसा, वो कहते हैं अनदर काइंड ऑफ इल्यूजन इज दैट इज टू थिंक दैट वन विल बिकम हैप्पी बाय ट्राइंग टू सेटिस्फाई द डिजायर्स दैट अराइजेस फ्रॉम द इल्यूजरी बॉडी और अटेनिंग एलिवेशन टू द हायर प्लैनेटरी सिस्टम और बाई परफॉर्मिंग वेरियस टाइप्स ऑफ वैदिक रिचुअल्स, दिस इज आर इल्यूजन्स। एक दूसरे प्रकार के भ्रम यानी मोह क्या है कि हम क्या सोचते हैं कि हमारे इच्छाओं को पूर्ण करने से ही हम आनंदित हो सकते हैं, विल बिकम हैप्पी बाय ट्राइंग टू सेटिस्फाई द डिजायर्स अराइजेस फ्रॉम द इलूजरी बॉडी। हमारे हमारे भ्रामक शरीर के द्वारा जो इच्छाएं हम उत्पन्न होता है हमारे मन में, उन इच्छाओं को पूर्ण करने से हम आनंदित हो जाएंगे ऐसा हम सोच रहे हैं। इसीलिए देखिए, जो भी हमको हमारे मन में इच्छाएं आते हैं बोलने के लिए, खाने के लिए, करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, उन कार्यों को करते हैं, उन भाषाओं को बोल देते हैं, है ना। तो क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि वो करने पर हम खुश हो जाएंगे, हमको आनंद मिलेगा। तो ये भी एक प्रकार का भ्रम है, मोह है ना। तो एक प्रकार का मोह क्या बोला कि इंद्रिय भोग से हमको आनंद मिल जाएगा, और दूसरे प्रकार का मोह के बारे में क्या बताया कि हमारे इच्छाओं को पूरा करने से हमको आनंद मिलेगा। उसमें तीन चीज और करके प्रोपागेट करते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा वो बोलते हैं कि एलिवेशन टू द हायर प्लैनेटरी सिस्टम। कभी कभी हम उच्च लोगों के ओर जाने की इच्छा करते हैं या जाते भी हैं, तब हम सोचते हैं कि हमको सुख मिलेगा या आनंद मिलेगा। फिर और करके फिर से क्या बोलते हैं, बाय परफॉर्मिंग वेरियस टाइप्स ऑफ वैदिक रिचुअल्स, कर्मकांड करते हैं, है ना, बहुत सारे कर्मकांड करते हैं, ये व्रत, वो व्रत, वो व्रत, है ना। जैसे कि अभी चार पाँच दिन पहले शायद कुछ शिव जी का एक व्रत था, है ना, जो अनमेरिड गर्ल्स है उन लोग कर रहे थे ऐसा। तो हमने देखा कितने सारे भक्त लोग हैं, अपने अपने बेटियों को व्रत करवाया है ना, छोटे छोटे बच्चों को भी। तो ये हम लोग भक्त हो के हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना। तो ये हम ऐसा सोचते हैं कि इस प्रकार के जो रिचुअल्स है ना, वैदिक रिचुअल्स, वो वेदों में वर्णन है, वो व्रत, उन व्रतों के बारे में, सभी व्रतों के बारे में वो जो ना वेदों में लिखा गया है। तो वो व्रत किसके लिए है, कर्मकांड है। तो कर्मकांड के लिए मैंने क्या बताया था भगवद्गीता में, भगवद्गीता पढ़ते समय, कर्मकांड मतलब क्या है, जो कार्य जिससे कुछ फल प्राप्ति की इच्छा रखते हुए किया जाता है उसको कर्मकांड कहा जाता है। वो कर्म योग नहीं है, कर्म योग वो है जो जिसका उस जिस कर्म का उद्देश्य होता है भगवत प्राप्ति, या जो कर्म हमें भगवान के साथ जोड़ता है, दैट इज कर्म योग, और दैट इज निष्काम कर्म या भक्ति उसी को कहा जा सकता है। मगर जो कार्य हम करते हैं, इवन हम हरे कृष्णा भी जपते हैं और हरे कृष्णा भी जपते हैं कुछ प्राप्ति के उद्देश्य से, तो वो कैसे हो जाएगा, हाँ, वो कर्मकांड की जैसा ही होगा, है ना। कर्मकांड कुछ प्राप्ति के उद्देश्य से कर रहे हैं, हाँ, नो डाउट, जो वैदिक कर्मकांड है या जो देवी देवताओं का उपासना है उससे थोड़ा बढ़कर है, ऊंचे कोटि का है। और इससे फायदा ये हो सकता है कि हमको भगवत शुद्ध भक्ति का प्राप्ति होने की संभावना रहता है, क्योंकि हम अल्टीमेटली कुछ प्राप्त करने के लिए भी भगवान के पास ही आए हैं ना, है ना। तो देवी देवताओं के पास जाकर मांगने से कई गुना अच्छा है कि भगवान के पास ही आकर मांगे। तो कोई व्यक्ति अगर ऐसा है कि वो आके मांगता है कोई चीज़ को भगवान के पास, तो हमको उसको देख के निंदा, मतलब ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, देखो मांग रहा है उसके बदले में कुछ करके, ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए। नो डाउट वो शुद्ध भक्ति से एक स्टेप नीचे है, है ना, क्योंकि कुछ कामनाएँ रखा हुआ है, कुछ प्राप्ति की इच्छा रखा हुआ है, मगर वो आगे जाके वो निश्चित रूप से शुद्ध भक्त बना। ध्रुव महाराज को देखो, है ना, वो कुछ पाने के लिए गए थे मगर बाद में वो शुद्ध भक्त बन गए ना, है कि नहीं। इसलिए ये बहुत आसान है, मगर ये मोह है कि हम इस शारीरिक संबंधों से, है ना, और शारीरिक जो अर्ज, है ना, जो इच्छाओं से उत्पन्न हुई इच्छाओं से, कामनाओं से, कामनाओं को पूर्ण करने पर हम आनंदित हो जाएंगे करके ये जो भावना है वो सही नहीं है, उसी को मोह कहा जाता है, क्योंकि वो है नहीं। क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए विचार करके देखिए, क्या सच में ऐसा कौन सा भोग है, शारीरिक भोग, जिसको भोग करने से हमको आनंद मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा कोई भोग नहीं है, है ना। हम सोचते हैं कि हमको ये रिलेटिव्स जो है ना हमको आनंद प्रदान करेंगे, हम सोचते हैं कि हमारे फ्रेंड हमको आनंद प्रदान करेगा, या हमको ये खाना आनंद प्रदान करेगा, और ना ये मोबाइल आनंद प्रदान करेगा,
इस प्रकार से हम टीवी आनंद प्रदान करेगा, पैसे आनंद प्रदान करेंगे, गाड़ी, बंगलो, बाइक, हम ऐसे सोचते हैं, मगर ये सारे चीज़ें हमको आनंद प्रदान नहीं कर सकते हैं, है ना। ये केवल हमारा मोह मात्र है, ये हमारा भ्रम है कि हम उससे आनंद ले रहे हैं या आनंद लेंगे, ऐसा हम सोच रहे हैं, है ना। ये मोह क्यों है, ये भ्रम क्यों है, क्योंकि हम अपने आप को ये शरीर करके सोच रहे हैं। हम जिस थोड़ी देर के लिए भी, आप जो क्षण आप अपने आप को मैं ये शरीर नहीं हूँ ऐसा सोचोगे, उस क्षण आप संसार के सबसे बड़े वैरागी बन जाएंगे। क्योंकि आपको कितना अच्छा खाना, कितना अच्छा संबंधी, मतलब हमारा प्रिय व्यक्ति, या कितना अच्छा घर, गाड़ी, बंगलो, कोई भी चीज आपको रुचि नहीं प्रदान करेगा। जो थोड़ी देर आपके मन में ये विचार आएगा कि असलियत में मैं तो ये शरीर नहीं हूं ना, और जो नश्वर शरीर में मैं जस बंधा हुआ हूं, ऐसे आपको लगेगा, जो सोचेंगे, जो जितना देर, उतना देर आप बहुत बड़े वैरागी बन सकते हैं। उतना देर आपको कुछ भी नहीं रुचेगा, उतना देर आप मतलब एक बहुत एकदम सोने जैसा आइटम खाने के लिए भी दिया जाए, आपको मजा नहीं आएगा। अरे क्या रे, है ना, क्योंकि आपको नौ ज्ञान हो गया कि अभी मैं ये शरीर नहीं। मगर हम क्या करते हैं, कभी कभी याद रखते हैं खाने के आते समय, उस समय हम क्या करते हैं, उस चीज़ को भूल जाते हैं। अभी याद करते कि मैं बड़ी हूँ, मैं अभी टेस्ट लूंगा, अभी पेट भरूंगा, वैसा वैसा। तो इसी के कारण क्या करते हैं, हम इसी चीज़ों से हम आनंद प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं। तो ये असलियत में मोह है, ये भ्रम है। तो युधिष्ठिर महाराज का क्या स्थिति है अभी? युधिष्ठिर महाराज, उनके जो फ्रेंड्स है अभी, 11 अक्षौहिणी सेना और इनका 7 अक्षौहिणी सेना, तो 7 अक्षौहिणी सेना में जितने लोग थे, ये सभी लोग युधिष्ठिर महाराज के फ्रेंड्स होंगे कि नहीं? नहीं तो उनके लिए मरने के लिए क्यों आ गए? अभी कोई व्यक्ति हमारे लिए दूसरे से झगड़ा करता है तो हमारे लिए प्रिय हो जाता है ना, होता है कि नहीं, है ना। अभी हमको कोई, हमारे विरुद्ध कोई झगड़ा कर रहा है हमारे साथ, तो एक जन आएंगे हमको सपोर्ट करके उसके साथ झगड़ा करेंगे, तो फिर बाद में ये व्यक्ति हमारा प्रिय हो जाएंगे कि नहीं? क्यों? उसके लिए, हमारे लिए उसके साथ झगड़ा किए तो मित्र हो गए हमारे, है कि नहीं? क्या, शत्रु का शत्रु मित्र, हाँ, ये हमारा अपना भावना है। तो जो युधिष्ठिर महाराज के जितने भी सैनिक थे, वो सभी लोगों ने, योद्धा सैनिक जितने भी लोग थे, युधिष्ठिर महाराज की ओर से लड़ने के लिए आए थे। और युद्ध का उद्देश्य क्या था? युधिष्ठिर महाराज राजा बनेंगे, है कि नहीं? युधिष्ठिर महाराज के मन में वही घुसा हुआ ना कि मैं राजा बनने के लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ और इतने सारे लोग खत्म हो गए, इतने सारे लोग खत्म हो गए, तो उनके मन में वो बैठ गया, इतने सारे लोग मर गए, इतने सारे लोग मर गए, क्योंकि बेचारे धर्मराज थे, है कि नहीं? तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज की भावनाओं से दो चीज हम ध्यान दे सकते हैं। ये वैसे ही स्थिति है युद्ध से पहले जो स्थिति अर्जुन का था। युद्ध से पहले भी अर्जुन रो रहा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा करके। ऐसे अगर देखेंगे तो युधिष्ठिर महाराज से भी अर्जुन ज्यादा, मतलब हाँ, ज्यादा बुद्धिशाली, मतलब ऐसा प्रतीत होंगे, क्योंकि ये रिजल्ट को देख के दुखी हुए वो, मतलब एक कार्य करने से पहले रिजल्ट के बारे में सोच लिए थे अर्जुन ना, यही सोचे थे ना, अरे सभी मेरे सगे संबंधी मारे जाएंगे, है ना, सोचे थे कि नहीं? और मारे जाएंगे, और ये सब मरने के बाद हम राजा बन के क्या करेंगे, किसको दिखाएंगे? सब कुछ अर्जुन सोच लिया था युद्ध से पहले। अभी युधिष्ठिर महाराज युद्ध के बाद सोच रहे हैं, अरे सब मर गए, द्रोणाचार्य मर गए, दुर्योधन मर गया, सब मर गए, यार मैं अभी राजा आसन में बैठ के करूंगा क्या? कोई है ही नहीं सामने, किसको दिखाऊंगा ये ऐश्वर्य? और मेरे राजा बनने के चक्कर में सभी लोगों को मृत्यु का सामना करना पड़ा, कितने लोग मर गए मेरे अकेले के भोग की वजह से, या हमारा परिवार की भोग की वजह से, है ना। हमारे परिवार के भोग की वजह से कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारा हम हमको हमारा भोग के वजह से या हमारे परिवार वालों के भोग के वजह से हम दूसरों को बहुत कष्ट देते हैं, है ना। बहुत बहुत पॉलिटिक्स करते हैं, बहुत निंदा करते हैं, बहुत अपमानित करते हैं दूसरों को, केवल हमारे वजह से या हमारे परिवार वालों के वजह से, है ना। तो युधिष्ठिर महाराज ऐसे सोच रहे थे। तो ये लक्षण अच्छा है या बुरा है, क्या क्या विचार करना चाहिए? ये अच्छा है, ऐसा विचार होना चाहिए, नो डाउट। ये कार्य के बाद विचार आया, अर्जुन को कार्य से पहले विचार आया था, और ये सच में ये विचार अच्छा है। अर्जुन के बारे में श्रील प्रभुपाद जब तात्पर्य लिखते हैं ना पहले अध्याय में, तभी जब सबसे पहला अर्जुन रोता हुआ दिखाई पड़ा, तभी श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि श्री ये सद्गुण है। क्यों? क्योंकि अर्जुन एक भक्त थे, इसलिए दूसरों के प्रति करुणा स्वाभाविक था अर्जुन के मन में। और ठीक दूसरे श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद बोलते हैं कि मूर्ख है, देहात्म बुद्धि के वजह से ये दुख उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को वही स्थिति है ना। तो एक तो है कि सच में राजा अपने प्रजाओं की क्षति से दुखी होगा, क्योंकि प्रजाएं उनकी संपत्ति है, प्रजाओं का देखभाल करना राजा का ड्यूटी है, और राजा होते हुए प्रजाओं निहत हो जाना, मर जाना, और राजा बचा नहीं पा रहा है। पिताजी खड़े हैं और पिताजी के सामने सामने बेटा मर जा रहा है, और पिताजी बेटे को बचा नहीं पा रहे हैं, तो क्या स्थिति होगा पिता का? और पिता क्या खुश रहेगा? नहीं, मैं तो पिता पिता बना रहा ना, भले ही बेटा मर गया। नहीं, वो टूट पड़ेंगे वो पिताजी, है ना, दुखी हो जाएंगे, क्योंकि उनके पिता उनके सामने शरीर को त्याग दिया। ठीक उसी प्रकार से एक राजा के सामने उनकी प्रजा पुत्र तुल्य है, संतान है उनके। तो एक राजा के सामने सारे संतानों का हत्या, मृत्यु, खून हो जा रहा है, तो राजा कैसे शांत रह सकता है? इसलिए बहुत ही बहुत शोकग्रस्त थे, दुखी थे, है ना। तो ये एक अच्छा लक्षण है, एक राजा का सही गुण है, सही लक्षण है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज एक बहुत अच्छे राजा थे, राज ऋषि थे, उनके अंदर सभी प्रकार के गुण था, वो भगवान के भक्त होने के कारण ये सारे गुण। प्रभु उस श्लोक में प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में अर्जुन के लिए जो श्लोक जो तात्पर्य लिखे थे, उसमें प्रभुपाद ये श्लोक का कोटेशन देते हैं, ये शास्त्री भक्तिर भगवती अकिंचना, जो एक बार भगवान का भक्त बन जाता है उसके अंदर सारे सद्गुण अपने आप आ जाते हैं, अलग सा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ता है। तो एक तरफ से हम लोग अगर सोचेंगे तो युधिष्ठिर महाराज का शोक सही है, मगर दूसरे ओर से सोचेंगे, अगर हमारे जो आध्यात्मिक फिलोसफी के अनुसार सोचेंगे, ज्ञान के अनुसार, आत्मा की ज्ञान के अनुसार अगर सोचेंगे, आत्म साक्षात्कार के अनुसार अगर सोचेंगे, तो युधिष्ठिर महाराज देहात्म बुद्धि में है। हाँ, युधिष्ठिर महाराज देहात्म बुद्धि में, प्रभुपाद तात्पर्य में उसी बात को कहते हैं कि देखो इधर युधिष्ठिर महाराज को शोक करने की क्या आवश्यकता था, है ना। तात्पर्य में लिखते क्या है प्रभुपाद जी, मनुष्य को भली भांति जानता है कि जीव ना तो शरीर है, ना मन है, ना अपितु भौतिक कल्पना, अपितु भौतिक कल्पना से परे है। सामान्य मनुष्य हिंसा अहिंसा को शरीर से जोड़ता है, लेकिन यह एक प्रकार का मोह है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने वृत्ति के अनुसार कर्तव्य से बंधा हुआ है। क्षत्रियों को चाहिए कि वो क्या करेगा, वो सही निमित्त के लिए विरोधी पक्ष का परवाह न करते हुए युद्ध करना, इस प्रकार का कर्तव्य का पालन करते हुए शरीर के विनाश से विचलित नहीं होना चाहिए। ये उसका ड्यूटी है, एक तो ये है ही, क्योंकि ड्यूटी करते हुए अगर किसी का, अगर क्षत्रिय किसी को मारूंगा नहीं बोलेगा तो फिर कैसे चलेगा ना, शासन कार्य ठीक से चलेगा नहीं दंड के बिना। और ये लोग तो बदमाश थे वैसे, दुर्योधन के खानदान, तो उन लोग का तो खत्म करना ही कहीं था ना। तो वहाँ पे शरीर की परवाह करेंगे तो फिर क्या, ये क्षत्रिय का कर्तव्य का सही से पालन नहीं हो पाएगा। दूसरे दृष्टि से अगर देखेंगे, असलियत में ये मृत्यु और ये जन्म, ये सारे चीज़ें भगवान के हाथ में है ना, है अगर ये हम सब लोग जो है ना शाश्वत आत्मा है ना, ही आत्मा को कोई मार सकता है, ना ही उसको सुखा सकता है, ना ही तलवार से खंडित किया जा सकता है कि नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक नयन्ति आपको न शोषयति मारुत। ये तो आत्मा का गुण है। तो युधिष्ठिर महाराज जिसमें दुखी होना नहीं चाहिए, जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से जो जन्म होता है उसका तो मृत्यु होने ही वाला है कि मृत्यु हो गया तो फिर से जन्म होगा ही होगा। तो कितने सारे श्लोकों में प्रभुपाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हैं है कि नहीं। देहि नस्मिन् यथा देहे कुमारम जौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। धीर व्यक्ति न मुह्यते, मोहित मतलब मोहित, मुह्यत मतलब मोहित, न मुह्यत मतलब मोहित नहीं होता है। कौन व्यक्ति नहीं मोहित नहीं होता है? धीर व्यक्ति मोहित नहीं होता है। अर्थात जिस व्यक्ति को ये ज्ञान है कि देहि नस्मिन् यथा देहे कुमारम जौवनम जरा, तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज क्या हो गए? मोहित हो गए। इसका मतलब वो धीर व्यक्ति नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है। इसका अर्थ यही निकाला जा सकता है। मगर प्रभुपाद ने फिर तात्पर्य में लिखते हैं कि एक्चुअली उद्देश्य ये था, जैसे अर्जुन भी मोहित नहीं होना चाहिए था, कृष्ण ने कृष्ण की वजह से ही मोहित हुआ उसने, वो खुद ही मोहित करवाए फिर उनको ज्ञान भी दिए, क्योंकि उनको ये ज्ञान देना था गीता का। ठीक वैसे भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज मोहित हो ताकि भीष्म के पास भेजूंगा ये जाएंगे, तब भीष्म पितामह जो ना जैसे मैं दिया था ये नॉलेज अर्जुन को, वैसे युधिष्ठिर महाराज को ये ज्ञान दे सके, युधिष्ठिर सुन सके। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज की ये स्थिति एक्चुअली क्रिएट किया गया है। नहीं तो युधिष्ठिर महाराज अज्ञानी थे ऐसा नहीं है, अज्ञानी थे ऐसा नहीं है। तो दोनों ओर से, एक तो राजा थे तो उनके अंदर करुणा और अपने प्रजाओं की क्षति में दुख होना ही चाहिए, ये उस दृष्टि से ठीक है। दूसरे दृष्टि से मोहित इसलिए हुए हैं कि वो एक्चुअली वो भगवान का ही अरेंजमेंट था जिसके कारण भीष्म पितामह से शिक्षा प्राप्त कर सके इसीलिए। और फिर हम लोगों ने आज क्या जाना कि मोह मतलब यही है जो नहीं है उसको है करके समझना। तो सबसे बड़ा मोह यही है कि हम ये शरीर नहीं है और शरीर करके समझ रहे हैं। पर प्रभुपाद जी ने एक जगह तात्पर्य में बताते हैं, एक है कि हमारे इंद्रियों की सुख, इंद्रियों को भोग करने से हमको आनंद मिलेगा करके सोच रहे हैं, ये एक प्रकार का मोह है। और कभी कभी हम सोच रहे हैं कि हमारे इच्छाओं को पूरा करने से जो है ना हमको आनंद मिल सकता है, तो ये एक प्रकार का मोह है। दूसरी बात यह है, जब तक हम इस मोह से दूर नहीं होते हैं तब तक हमको भगवान की भक्ति नहीं मिल सकता है, नहीं हम अच्छे से भक्ति नहीं कर पाएंगे, मोह से दूर नहीं होते हैं। तो कौन सा श्लोक में है भगवद गीता के, जब तक हम मोह से दूर नहीं होते हैं, ये सम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम के दंड मोहर निर्मुक्त्वा भजन्ते माम दृढ़व्रता। जब सारा पाप खत्म नहीं हो, आफ्टर मेनी मेनी बर्थ्स एंड एग्जिस्टिंग पास एक्टिविटीज, व्हेन वन इज कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द ऑल कंटामिनेशंस एंड फ्रॉम ऑल इल्यूजरी ड्यूअलिटीज, जब पूरे मोह से मुक्त हो जाता है, सारे पापों से वो मुक्त हो जाता है, तभी जाके वो दृढ़ता से मेरा भक्ति व्रत कर सकता है। और जब तक हम ये ड्यूअलिटी है ना, मैं और मेरा ये जो मोह है वो मोह से नहीं निकलते हैं, तब तक हम भगवान की भक्ति अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम इस मोह से निकल जाए। देखिए दो प्रकार की चीज़ होता है, एक होता है ज्ञान और दूसरा होता है उस ज्ञान को अप्लाई करना, है ना। एक होता है एक होता है आत्मा का ज्ञान और एक होता है आत्म साक्षात्कार, ना। तो ज्ञान तो हम सभी लोग को कब से हो चुका है कि हम शरीर नहीं है, शरीर नहीं है, शरीर नहीं है करके, मगर हम शरीर नहीं है उस हिसाब से हमको जीना चाहिए, उस हिसाब से हमारा बोलचाल होना चाहिए, उस हिसाब से हमारा एक्टिविटीज होना चाहिए, उस हिसाब से हमारा जीवन यापन होना चाहिए कि हम शरीर नहीं है आत्मा ही है करके, है ना। और जब तक हम ये डुअलिटी, हम ये मुंह से नहीं निकलते हैं, हम ये शरीर नहीं आत्मा करके, जब तक ये शारीरिक भावनाओं से नहीं निकलते, तब तक हम दृढ़ता से भगवान की भक्ति नहीं कर पाएंगे, ये तो कन्फर्म है।
ना? और एक जगह भगवद गीता में बताया गया है ये क्या है, ये समंतर अप्रकाशो प्रवृत्तस्य प्रमादो मोह एव च तमस्य तानि जायन्ते बुद्धौ कुरुन विवृद्धे कुरुनंदन। क्या बताया गया, व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस ओ सन ऑफ कुरु डार्कनेस मैडनेस एंड इल्यूजन आर मैनिफेस्टेड। ये मोह क्यों उत्पन्न होता है हमारे अंदर, ये बताया गया है मोड ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस मतलब तमोगुण, तमोगुण के वजह से ये मोह उत्पन्न होता है, मतलब ये कारण है मोह उत्पन्न होने का, है ना, गीता में कृष्ण कहते हैं। तो हमको प्रयास करना चाहिए कि हम ये मोह से निकले, बाहर निकले एटलीस्ट, तो तभी जाके हम भगवान की जो भक्ति है उसको कर पाएंगे। और यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज का जो मोह है वो कैसे, वो कारण है आगे जाके एक बहुत बड़ा शिक्षा प्राप्त होने वाला है हम सबके लिए, और उस शिक्षा का ये बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए ही वो जो ना वो युधिष्ठिर महाराज मोहग्रस्त हुए थे ऐसा बताया गया। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की, युधिष्ठिर महाराज की, श्रील प्रभुपाद की।